आयशा और नक्श की शादी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा पहले ही पूरी साजिश करके उस घर में आई थी, और आते ही उसका पहला काम इशिका को घर से बाहर निकालना था। आयशा ने इशिका और नक्श को बातें करते देखा और उसने इस बात का अच्छा खासा तमाशा बना दिया था। वो इशिका को ज़बरदस्ती वसुधा के पास लेकर गई और उसे घर से निकलवाने की ज़िद करने लगी। इन सब के चक्कर में आयशा ने वसुधा को भी हर्ट किया। मामला अब इतना बढ़ गया था कि वसुधा की विला में इशिका बाहर के आंगन में अकेली खली थी और उसके आसपास पूरी राजवंश फैमिली और सिक्योरिटी गार्ड थे। नक्श उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर प्रेशर डाल रहा था कि वो इशिका को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दें। इशिका ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा, मैं आप सबको पहले ही अवेयर कर रही हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इन सब की वजह से दादी की तबीयत खराब हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहां खड़ा हर एक शख्स जानता था कि अभिमन्यु के लिए वसुधा क्या मायने रखती है, और इशिका के उन शब्दों ने भी काम किया। वो सब उसे घेर कर अपनी जगह पर खड़े तो थे, पर उनमें से किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वो इशिका की तरफ एक कदम भी उठा सके। उन सबको वहीं पर खड़े देखकर उर्वशी ने आगे आकर कहा, तुम्हें इतना तो पता है ना कि दादी की तबीयत किस हद तक खराब रहती है, और डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस से दूर रहने के लिए कहा है। ये लड़की उन्हें परेशान कर रही है, क्या अब भी तुम इसे बाहर नहीं निकालोगे? इतना सब कुछ कहने के बाद भी गार्ड्स अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अभिमन्यु के खिलाफ जाकर कुछ करें, क्योंकि उन्होंने अभिमन्यु को अपनी आंखों से देखा था। जब वो घर वापस लौटा था तो एक बार उर्वशी ने बदला लेने के लिए वो सभी फूड आइटम्स उसके लिए डिनर में बनवाए थे जिससे उसे एलर्जी थी। बदले में अभिमन्यु ने पूरे किचन स्टाफ को काम से हटवाकर किचन ही तोड़ दिया था। आज तक उस किचन स्टाफ को कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, और ऑफिस में भी यही हाल था, जो उसकी बात नहीं मानता वो उसे काम से निकाल देता था। उर्वशी समझ गई थी कि उसके धमकाए बिना गार्ड्स कुछ नहीं करेंगे। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको काम से निकाल दूंगी। रही बात अभिमन्यु की, तो जब वो आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी, वो तुम में से किसी को कुछ नहीं करेगा। उर्वशी के सहारे गार्ड थोड़ा आगे आए थे और उन्होंने वसुधा और इशिका को घेर लिया था, हालांकि वसुधा की वजह से अभी भी वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। आयशा ने सब कुछ समझा और फिर इशिका से कहा, अब तुम्हें दादी की फिक्र नहीं हो रही कि इन सब की वजह से उनकी तबीयत पर क्या असर पड़ेगा? खुद के साथ साथ इन्हें भी परेशान कर रही हो, वो भी बेवजह। आयशा का कहना भी सही था। इशिका ने वसुधा से कहा, दादी इन सब से मैं निपट लूंगी, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए। बोलते हुए उसने निवेदिता की तरफ देखकर कहा, मिस निवेदिता, प्लीज़ आप दादी को कमरे में लेकर जाइए। निवेदिता घेरे के अंदर आई, उसने वसुधा को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन वसुधा ने इशिका का हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निवेदिता ने वसुधा को समझाते हुए बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, दादी प्लीज़ बाहर चलिए, मेरा फ़ोन इन लोगों ने ले लिया है, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी लैंडलाइन से मिस्टर राजवंश को कॉल करके सब बता पाएंगे। वसुधा सब समझ गई थी और उन्होंने निवेदिता के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। जाने से पहले निवेदिता ने इशिका से बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, मिस सिन्हानिया, यहाँ सब कुछ आपके खिलाफ है, तो एक समझदार इंसान तब तक लड़ाई नहीं करता जब तक मामला उसके पक्ष में ना हो। बातों ही बातों में निवेदिता इशिका को सावधान रहने का कह रही थी। इशिका ने उसकी बात पर बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वसुधा के हटते ही आयशा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। गार्ड उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नक्श कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो इशिका के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। उसने तेज आवाज में कहा, इशिका अभी भी टाइम है, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना ये लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। मुझे तुमसे किसी तरह की बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं है। नक्श इशिका की फिक्र कर रहा था। ये देखकर आयशा की जलन की कोई सीमा नहीं रही। वो सिर हिलाकर बोली, इशिका प्लीज़ नक्श की बात को समझो, मैं तुम्हारे पति को जॉब दिलाने में हेल्प करूंगी। तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो तुम सिंघानिया हाउस में रह सकती हो, पर राजवंश फैमिली से चली जाओ। क्या सच में? इशिका ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो मुझे यहाँ इस अनजान घर में भी सहन नहीं कर पा रही हो, तो फिर अपने घर में कैसे सहन करोगी? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे किसी और प्लैनेट में भेज दो, तो ये झूठी बातें मुझे मत कहो। आयशा कुछ देर के लिए शांत हो गई, क्योंकि ये सच भी था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा है? तुम खुद कन्फ्यूज हो, कभी तुम अभिमन्यु चाचू के पास जाती हो तो कभी नक्श के पास आ जाती हो। तुम्हारा खुद का पति भी है जिसकी तरफ तुमने ध्यान तक नहीं दिया होगा। तुम्हारी इन हरकतों से नक्श तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और तुम सबको अपने इशारों पर नचाना बंद करो। अगर अभिमन्यु मुझसे इम्प्रेस होता तो मुझे नक्श के पास जाने की क्या ज़रूरत है? जो मैं कभी अभिमन्यु के पास तो कभी नक्श के पास जाऊंगी। दोनों के बीच कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम भी अच्छे से जानती हो, इशिका ने सिर हिलाकर कहा। बातों ही बातों में वो नक्श की इंसल्ट कर रही थी। उर्वशी ने बीच में ही चिल्लाकर कहा, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मेरा बेटा दिखने में अभिमन्यु से अच्छा नहीं दिखता है क्या? बोलते हुए उसने नक्श की तरफ देखा। नक्श दिखने में हैंडसम था, पर हाँ ये भी सच था कि अभिमन्यु के पास खड़े होने पर अभिमन्यु के आगे वो कुछ भी नहीं था, ना ही लुक्स में और ना ही बाकी कैपेबिलिटीज़ में। इशिका ने तुरंत ही बात को बदलते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है नॉलेज के मामले। बोलते हुए इशिका रुक गई थी। वो भी जानती थी कि नक्श एक अच्छा स्टूडेंट था और हमेशा आगे रहता था।
उसका ये बहाना यहाँ कोई काम नहीं आने वाला था। उर्वशी तुरंत इशिका के पास जाकर बोली, मेरा बेटा हर तरीके से अभिमन्यु से अच्छा है और उम्र में भी उससे कम है। उसे अपने से बड़ों का सम्मान करना आता है, ना कि अभिमन्यु की तरह वो एक घमंडी इंसान है। उर्वशी का साथ देते हुए आयशा ने कहा, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, नक्श हर तरीके से बेहतर है, तभी तुम उसके आगे पीछे घूमती रहती हो। तुम हम दोनों को अलग करना चाहती हो ना? बिल्कुल नहीं, इशिका ने सिर हिलाकर बेपरवाही से कहा, मैं तो तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि चाहे ये कितना भी बुरा क्यों ना हो, इसे तलाक मत देना और हमेशा इसी के साथ रहना, ताकि ये मेरे पीछे ना आए। उर्वशी से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हुई, वो गार्ड की तरफ देखकर बोली, इससे बातें करने का और उलझने का कोई फायदा नहीं है, अब वक्त सबक सिखाने का है। ये सीधे सीधे यहाँ से निकलती है तो ठीक है, वरना मार पीट कर जैसे भी निकाल सकते हो इसे यहाँ से बाहर निकालो। उर्वशी का इशारा पाते ही गार्ड इशिका की तरफ बढ़ने लगे। नक्श उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही आयशा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अगर तुम चाहते हो कि अभिमन्यु चाचू और इशिका के बीच में कभी कुछ ना हो, तो फिलहाल के लिए कुछ मत बोलना। नक्श ने सिर हिलाया, आयशा उसके इमोशंस का अच्छे से फायदा उठा रही थी, तो वहीं सिक्योरिटी गार्ड इशिका पर हमला करने के लिए तैयार थे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त एक मीटिंग में था, जब उसे वसुधा का कॉल आया। कॉल पर बात करते ही उसने बीच मीटिंग में ही पृथ्वी से कहा, अभी इसी वक्त गाड़ी निकालो, मुझे घर जाना है। अभिमन्यु ने मीटिंग बीच में रोकने का कोई बहाना नहीं तक बताया और सीधा वहां से जाने लगा। मीटिंग में मौजूद बाकी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। पृथ्वी भी घबरा गया था और वो जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए ड्राइवर को कॉल करने लगा।
वो लोग आपस में अलग अलग अंदाजे लगा रहे थे। उनके हिसाब से शायद वसुधा की तबीयत खराब हो रही थी, तो किसी को ये लगता था कि जल्द ही अभिमन्यु की पत्नी वापस आने वाली है। अभिमन्यु ने उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो जल्दी से नीचे पार्किंग एरिया में पहुंचा। उसने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकलो। सर, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप कहीं जा रहे हो? ड्राइवर ने घबराते हुए पूछा। अभिमन्यु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुककर उसके सवालों के जवाब दे सके। वो तुरंत ड्राइवर की जगह पर बैठा और गाड़ी लेकर राजवंश विला जाने के लिए निकल गया। इस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल हाई थी। अभिमन्यु उस गाड़ी को ऐसे चला रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार हो। तो वहीं पृथ्वी नीचे पहुंचा, उसने गार्ड से कहा, आप लोग यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो? जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो। कुछ ही देर में अभिमन्यु राजवंश विला पहुंच चुका था और उसने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया तक में नहीं रोकी थी। वो सीधा अपनी गाड़ी को वसुधा के विला की तरफ लेकर जा रहा था, जहां पार्किंग करना मना था। अभिमन्यु जल्दी से गाड़ी से बाहर उतरा तो उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे के भाव सर्द थे और उसके दिल में इस वक्त यही चल रहा था कि वो इशिका को बुरे हाल में देखेगा। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा तो उसने देखा इशिका आंगन के बीचों बीच तीखी निगाहों से खड़ी जमीन पर गिरे सिक्योरिटी गार्ड को देख रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उससे भी ज्यादा हैरान आयशा और नक्श थे। नक्श को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इशिका फाइट में इतनी अच्छी हो सकती है, और ना ही आयशा ने इस बारे सोचा था। सिंघानिया मेंशन में बचपन में वो हमेशा डरी हुई रहती थी और मार खाती थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी होने के बाद इशिका इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो 5 सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट करके उन्हें धूल चटा सकती थी। आयशा ने नक्श की आंखों में इशिका के लिए इमोशन देखे, मानो आंखों ही आंखों में वो उसकी तारीफ कर रहा हो। तो ये आयशा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चिल्लाकर बोली, ये इस तरह मेरे घर में मारपीट नहीं कर सकती है, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। आयशा की तेज आवाज़ सुनकर मानो उर्वशी होश में आ गई हो, जो इशिका को इस तरह मारपीट करते हुए देखकर डरकर कुछ कदम पीछे हो गई थी। उसने तुरंत बौखलाते हुए कहा, आयशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी पुलिस को कॉल कर रही हूँ, उन्हें जवाब देना कि क्या सोचकर तुमने ये सब किया। उर्वशी अपना मोबाइल निकालकर कॉल करने ही वाली थी कि किसी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो इशिका थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने थोड़ी देर पहले निवेदिता को कॉल नहीं करने दिया था, तो आपको क्या लगता है मैं आपको पुलिस को कॉल करने दूंगी? इशिका का ये रूप देखकर उर्वशी घबरा गई। वो कुछ कदम पीछे हटी और एक कैबिनेट से टकराकर गिर गई थी। उर्वशी ने तेज सांसें लेते हुए बाहर की तरफ देखा तो उसे अभिमन्यु दिखाई दिया। इस वक्त वो उसे किसी फरिश्ते की तरह लग रहा था, जिसने उन सबको इशिका से बचा लिया था। उर्वशी ने जल्दी से कहा, अभिमन्यु अच्छा हुआ तुम आ गए, देखो ये लड़की पागल हो गई है और कैसी अजीब हरकतें कर रही है, इसका बस चले तो ये यहाँ सबकी जान ले ले। इशिका की नज़र अभिमन्यु से मिली, उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था, मानो अगर कोई इस वक्त उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वो उन सबको मार देगी। इशिका के साथ यही होता था, जब उसे गुस्सा आता था तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता था। अभिमन्यु जल्दी से इशिका के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज़ में बोला, तुम्हें यहाँ ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभिमन्यु के शब्दों ने इशिका को हैरानी में डाल दिया था। मौके का फायदा उठाते हुए आयशा ने जल्दी से कहा, हाँ चाचू, हम भी इसे यही समझा रहे थे कि आराम से बात करते हैं, लेकिन ये मारपीट पर उतर आई, इसने तो दादी की तबीयत की भी परवाह नहीं की। उर्वशी भी तुरंत बोली, ये सही कह रही है अभिमन्यु, तुम्हें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए, ये तुम्हारी मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ काम करने वाले लोगों पर हाथ उठाएगी, एक ही सरदार और सभ्य लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी।
वो सब अभिमन्यु का तेवर देखकर उसे इशिका के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं नक्श की निगाहें अभिमन्यु के हाथ पर टिकी हुई थीं, जिसने अभी भी इशिका का हाथ पूरे हक से पकड़ रखा था। अगर नक्श यही करता तो इशिका उसका हाथ झटक कर दूर कर देती, लेकिन इशिका ने अभिमन्यु को कुछ नहीं कहा। ये सब उसके दिल में और जलन पैदा कर रहा था। वहीं इशिका ने उन सबकी बातों का जवाब देने के बजाय अभिमन्यु की आंखों में देखकर धीरी से कहा, क्या तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह ये लगता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल सही ही तो कह रहे हैं ये लोग कि तुम्हें मारपीट करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें आइडिया भी है इसके बाद क्या हो सकता है? ये मेरा घर है मिस सिंघानिया, कोई रेसलिंग ग्राउंड नहीं जो तुमने फाइट करनी शुरू कर दी, अभिमन्यु ने अपनी इंटेंस वॉइस में कहा। इशिका हैरानी से अभिमन्यु को देख रही थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु उन लोगों का साथ देगा।